11 मई 1983 कुमारों से मुलाकात। कुमारों में सदा बाप दादा की उम्मीद है। कुमार विश्व को बदल सकते हैं अगर सभी कुमार एक दृढ़ संकल्प वाले बन आगे बढ़ते चले तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कमाल करने वाले कुमार होना, देखना बाबा के पास ऑटोमेटिक फोटो निकल जाता है। दृढ़ संकल्प वाले कुमार होना, कुमारों में शारीरिक शक्ति भी बहुत है इसलिए डबल कार्य कर सकते हो। स्थापना के कार्य में बहुत अच्छे सहयोगी बन सकते हो। कुमारों की बुद्धि में एक ही बात सदा रहती है कि मेरा बाबा और मेरी सेवा और कोई बात नहीं। जिनकी बुद्धि में सदा बाबा और सेवा है वह सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। सिर्फ कुमारों को एक बात अटेंशन में रखनी है, सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं। शरीर और बुद्धि दोनों से बिजी रहो, बिजी मैन बनो, बिजनेसमैन नहीं। जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो ऐसे बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करो। अभी यह सोचना है, यह करना है, दिनचर्या सेट होगी तो उसी प्रमाण बिजी हो जाएंगे। बिजी रहने वाले को किसी भी रूप से माया वार नहीं कर सकती। बुद्धि को बिजी करने के साधन सदा अपनाओ। जैसे शरीर को बिजी करने के साधन है ऐसे बुद्धि से सदा याद में नशे में बिजी रहो। ऐसी दिनचर्या बनाने आती है, सदाकाल के लिए नियम बना दो। जैसे और नियम बने हैं यह भी एक नियम बनाओ, बस करना ही है। इसी दृढ़ निश्चय से जो कमाल करने चाहो वह कर सकते हो। कुमार है बाप दादा के कर्तव्य के सितारे। सेवा के निमित्त तो कुमार बनते हैं ना, भाग दौड़ भी कुमार करते हैं। जो भी सेवाएं होती है उसमें कुमारों का विशेष पार्ट होता है, तो विशेष पार्ट लेने वाली विशेष आत्माएं हैं। यह नशा रखो, इसी खुशी में रहो तो देखेंगे कुमार ग्रुप क्या करके दिखाते हैं। कुछ करके दिखाना है, सिर्फ कहकर नहीं। सेवा के उमंग उत्साह वाले हैं, निश्चय बुद्धि है, अचल है, हिलने वाले नहीं है। ऐसे ही अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाकर दिखाओ। अभक्त मुरली 11 मई 1983। बाबा कह रहे हैं कुमारों में सदा बाप दादा की उम्मीदें हैं। कुमार विश्व को बदल सकते हैं अगर सभी कुमार एक दृढ़ संकल्प वाले बन आगे बढ़ते चले तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कमाल करने वाले कुमार होना, देखना बाप दादा के पास ऑटोमेटिक फोटो निकल जाता है। दृढ़ संकल्प वाले कुमार होना, कुमारों में शारीरिक शक्ति भी बहुत है इसलिए डबल कार्य कर सकते हैं। स्थापना के कार्य में बहुत अच्छे सहयोगी बन सकते हैं। कुमारों की बुद्धि में एक ही बात सदा रहती है कि कौन सी बात रहती है, मेरा बाबा और मेरी सेवा और कोई बात नहीं। जिनकी बुद्धि में सदा बाबा और सेवा है वह सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। सिर्फ कुमारों को एक बात अटेंशन में रखनी है, कौन सी बात अटेंशन में रखनी है, सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं। शरीर और बुद्धि दोनों से बिजी रहो, बिजी मैन बनो, बिजनेसमैन नहीं। जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो ऐसे बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करो। अभी यह सोचना है, यह करना है, दिनचर्या सेट होगी तो उसी प्रमाण बिजी हो जाएंगे। बिजी रहने वालों को किसी भी प्रकार से माया वार नहीं कर सकती। बुद्धि को बिजी करने के साधन सदा अपनाओ। जैसे शरीर को बिजी करने के साधन है ऐसे बुद्धि से सदा याद में नशे में बिजी रहो। ऐसी दिनचर्या बनाने आती है, सदाकाल के लिए नियम बना दो। जैसे और नियम बने हैं वह यह भी नियम बनाओ, बस करना ही है। इस दृढ़ संकल्प से जो कमाल करने चाहो वह कर सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि में सदा बाबा और सेवा है वह सहज ही माया जीत बन जाते हैं। सिर्फ एक बात का टेंशन रखना है कि स्वयं को सदा बिजी रखो, वो भी कभी खाली नहीं रखो, वो भी दो रीति से, एक तो तन से और एक बुद्धि से। तन से या मन से, शरीर से और बुद्धि से, दोनों से बिजी रहो। बिजी मैन बनना है, बिजनेस मैन नहीं। कर्म की जैसे दिनचर्या सेट है वैसे ही बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करो। तो दो दिनचर्या, एक कर्म की दिनचर्या और दूसरी बुद्धि की दिनचर्या। बुद्धि की दिनचर्या बहुत सूक्ष्म है, बुद्धि की कहो या मन की कहो, उससे भी पहले है कर्म की दिनचर्या। हमारे कर्म अमृत वेले से लेकर तो रात तक, वो जो दिनचर्या हो सबसे पहले उसे सेट करना है। ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण बनते ही सबसे पहला जो बड़ा कार्य है वो है इस दिनचर्या को सेट करना। और एक दूसरी बात है कि स्वयं को कभी भी खाली नहीं रखना, स्वयं को सदा बिजी रखना। किसमें? अमृत वेला किया, हमारे जो दिनचर्या उसमें ऐसा कोई भी एक समय ना हो कि जिसमें हम खाली बैठे हैं, व्यर्थ में है दिमाग, जिसमें खाली है। दिनचर्या बहुत सारी तो सभी की फिक्स है, पर फिर भी जो बीच बीच का समय है जो कि खाली है, उसमें हम क्या कर रहे हैं उसको सफल करना है। अगर अमृत वेले से चालू करें, अमृत वेला हुआ उसके इमीडिएट बाद का समय हम क्या करते हैं, ये क्लास भी हुआ उसके इमीडिएट बाद का 6 बजे से 7 बजे तक हम क्या करते हैं, मुरली का समय या उसके भी बाद का भोजन का समय हटा दो, बाकी जो समय बचा है सेवाओं का, सेवाओं में भी बीच बीच में हमारे पास बहुत सारा समय है, उस समय हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये निकालना है कि हमारा समय वेस्ट कहाँ जा रहा है, एक तो ये, दूसरा खाली हम कहाँ कहाँ पर है, तीसरा उस खाली समय को हमें किससे भरना है। समय हमारा वेस्ट कहाँ जाता है इसकी चर्चा हमने बहुत बार की है, हमें कहाँ कहाँ बिजी रखना है स्वयं को, ये एक बहुत सुंदर चर्चा का विषय है। केवल ये कह देना कि सेवा में बिजी रहो, योग में बिजी रहो, इससे नहीं होगा। हमें अपने समय को कैसे बिजी रखना है और किस में बिजी रखना है, हाँ एक है रिवाइज करने में बिजी रखना है स्वयं को मन से। तो जो भी मुरली सुनी है या फिर बुद्धि हमारी एकाग्र कब होती है, जैसे कल का वरदान जो था ना, बुद्धि को मन को एकाग्र करने का अभ्यास, संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। सबसे बेस्ट विधि जो है संकल्पों को एकाग्र करने की वो है स्मरण, याद करने की कोशिश करना। जैसे ये क्लास पूरा हुआ, क्लास के पूरे होते ही तुरंत बाद यहां से निकलने के बाद बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा उसको याद करना, या तो एक जगह बैठ के या तो चलते फिरते, बजाय इसके कि हम बातों में लग गए, याद करने की कोशिश। जैसे हम कोई चीज याद करते, चाहे सुना हुआ या पढ़ा हुआ, स्वतः ही बुद्धि एकाग्र हो जाती है। द पावर्स ऑफ द माइंड आर लाइक द रेज ऑफ द सन, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, द पावर्स ऑफ द माइंड आर लाइक द रेज ऑफ द सन, सूर्य की किरणों की तरह है। द मोर फोकस दे आर द मोर इल्यूमिन दे बिकम, जितने ही वो फोकस होंगे उतनी ही वो अधिक शक्तिशाली होंगे। तो मन की जो शक्तियां है या उसको फोकस करने का प्रयत्न करना, कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयत्न करना माइंड को। जैसे हमने कल की मुरली सुनी, हम उसको याद करने की कोशिश करें क्या सुना, क्या सुना, या फिर हम वो याद करने की कोशिश करें जो बहन जी ने सुनाया, या कुछ उदाहरण दिए, या हमने अपनी डायरी में कुछ लिखा। किसी भी तरह से उसे याद करो। सुनाने वाले ने उसे किस तरह से सुनाया, सुनाते समय सुनाने वाले ने कौन कौन से उदाहरण देकर उस बात को समझाया, सुनाते समय हमने कहां कहां और कैसे कैसे किस रीति से उसको लिखा, उसको भी याद करने की। एनीवेज, जिस जिस तरह से हमने उसको सुना, हम कहां बैठे थे सुनते समय, उस पॉइंट को हमने किस पॉइंट के साथ में जोड़ा, अपने मन में पहले से ही कौन सा पॉइंट था जिसके साथ ये नया पॉइंट जोड़ा गया, याद करने की कोशिश करना, अर्थात कॉन्सेंट्रेट हो जाना। कल हमने यहां क्लास में क्या सुना, उसको याद करने की कोशिश, जो भी चीज सुनी है और पढ़ी है उन उनको याद करना। दैट इज द फर्स्ट मेथड टू गेट कॉन्सेंट्रेटेड। तो एक बिजी रहने का साधन है रिवाइज करना। कहां रिवाइज करना, एक है एक संगठन में रिवाइज करना। संगठन में रिवाइज करते समय जो करा रहा है शायद उसका ज्यादा फायदा है, जो केवल सुन रहे हैं उनका इतना नहीं। पर यह भी आवश्यक नहीं है जो करा रहा है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड है या नहीं है, उसकी भी हो सकता है बुद्धि भटक रही है रिवाइज कराते कराते भी। इसके लिए सबसे बेस्ट विधि जो है रिवाइज करने की, वो है मन में रिवाइज करना, मन की आंखों से देखना, जो पढ़ा है उनको देखना, लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में मन से देखना, मन से देखना, मन से पढ़ना। जो लोग अंधे होते हैं उनकी संवेदनशीलता जो होती है आंखों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत कुछ वो सुन सकते हैं, उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत फोकस्ड होते हैं। धृतराष्ट्र का दिखाया ना, पदचाप से वो जान लेता है कौन आया है, कोई भी आया हो उसको पहचान लेता है कि ये आया वो आया। तो ये जो है हमारे सेंसेस को अधिक स्टिमुलेट करना, तीव्र करना, संवेदनशील बनाना, ये भी एक अभ्यास है। तो यहां हम बात कर रहे थे मन से उसको रिवाइज करना, एक विधि तो ये है। और कब रिवाइज करना, बार 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 रिवाइज करना। दिनचर्या में जैसे सेवा हो गई, 12 बजे एक समय फिक्स कर दो कि 12 बजे हमें सुबह जो मुरली सुनी है या सुबह ये जो क्लास सुना है इसको रिवाइज करना है। क्योंकि 24 घंटे में यदि हमने रिवाइज नहीं किया तो वो ब्लैकआउट, कुछ नहीं रहता है, ब्लैंक, डिलीट, कंप्लीट डिलीट, सीधा रिसाइकल बिन में चला जाता है। उधर से फिर एक साथ एक दिन डिलीट ऑल, वहां से कुछ नहीं बचता है। इसके लिए 12 बजे का समय फिक्स करो कि जैसे ट्रैफिक कंट्रोल पूरा हुआ सोचो, या फिर उसी ट्रैफिक कंट्रोल में भी कभी कभी याद करो कि आज मुरली में कम से कम कोई एक मुख्य पॉइंट क्या थी, थीम क्या था, सार क्या था, ऐसा क्या था जो हमने पहली बार ही सुना, ऐसा क्या था जो थोड़ा सा हटके था, जो हमेशा नहीं आता है, ऐसा कौन सा वो शब्द था जो थोड़ा नया था, वो शब्द, वो पॉइंट, वो चिंतन बिंदु कौन सा था। तो एक है रिवाइज करना, केवल अमृत वेले या केवल शाम को नहीं, एक तो बीच में दिनचर्या की बीच में एक ऐसा समय रखो कि जिसमें कुछ मुख्य पॉइंट रिवाइज करना है। अच्छा, हम रिवाइज करने का कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो जो डायरी है या जो चीट पेपर है या जो छोटी डायरी है या मोबाइल में कहीं है लिखा हुआ, उसको आंखों के सामने लाओ और फटफट रिवाइज करो फटाफट। ये रिविजन बहुत जरूरी है, एक तो दोपहर का और एक का, एक जो शाम का समय है 8:30 से 9:30 का जो समय है, भोजन सब हो गया, सब कुछ हो गया, यहां पर भी और सेंटरों पर भी सभी को ये जो समय है, हो सके तो सेंटर की जो बहनें होती है और रात को भाई और बहन जो भी सेंटरों पर रहते हैं, बैठकर कुछ तो पढ़े और मुरली रिवाइज करे, साकार मुरली। साकार मुरली का रिवीजन बहुत जरूरी है। आधा घंटा अव्यक्तवाणी पढ़ना और आधा घंटा साकार मुरली सब संगठित रूप में डिस्कस करना, क्योंकि वो समय है, सब फ्री है उसमें, 8:30 से 9:30 ये जो समय है रात का, इसमें अगर संगठन नहीं है बना हुआ तो बजाय इसके कि हम टीवी पर कोई सीरियल देखें या भोजन के नए नए पकवान बनाने में बिजी रहे या फिर कोई एक जगह फिक्स कर कर तीन चार लोग मिलकर यहां वहां की बातें करें, पॉइंट बना के रखे है, दो तीन फिक्स पॉइंट है यहां पर भी बने हुए हैं चर्चा के, वहां पर बैठकर यहां वहां की चर्चा या फिर फोन इससे बात उससे बात, कोई इस कोने में कोई उस कोने में, कोई इस अंधेरे में कोई उस अंधेरे में बातें चलती है ना यहां वहां लंबी लंबी, टाइम बहुत है तो लंबी लंबी बातें, दिनचर्या दिन भर में टाइम नहीं मिला तो रात में समय निकालकर एकदम निश्चिंत होके एक एक घंटा आधा आधा घंटा, नहीं तो मैसेज यहाँ का मैसेज उधर, उधर का मैसेज इधर, इधर का गुड मॉर्निंग निकाल के उधर, इधर का गुड नाइट निकाल के उधर पेस्ट, इधर का थैंक यू उधर का थैंक यू, इधर का गुड डे उधर का गुड डे, इधर का जोक और उधर का जोक, क्या करना है ये सब करके
खुद के जोक बनाइए,
इधर का मैसेज उधर, इधर का चित्र उधर, इधर का कार्टून उधर, इधर का कार्टून उधर, किस लिए ब्राह्मण बने थे, कितना समय जा रहा है उसमें, टाइम वेस्ट, ये सभी टाइम वेस्ट में जाता है, हमारा समय इन सब बातों में ना जाए। हमें जो चीज बहुत अच्छी लगी, हमें ये इच्छा होती कि दूसरे भी उसे सुने, पहले खुद सुनो और स्वरूप बनो। योग्य शिक्षक कौन है मंजू बहन? हाँ आगे ना, जो अपने स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। योग्य शिक्षक वह है जो स्वरूप से शिक्षा देते हैं। कोई चीज भेजकर शिक्षा देना ये कोई बहुत बड़ा साधन नहीं है। जिसे हम भेज रहे हैं क्या वो पढ़ भी रहा है? हमारी तो शुभ भावना है कि वो पढ़े,
कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा। लास्ट वाले बदल
जाए। चलो 100 लोगों को भेजा तो एक लोग किसी एक ने उठाया, पर क्या ये फायदे वाली सेवा है?
वो तो बहुत जाने,
क्योंकि हमने कितना अपना समय उसमें दिया और संकल्प उसमें दिया और ये एक छोटा सा कुछ तो हुआ। उसी समय में यदि हमने संकल्प को एकाग्र किया होता हमारे तो यहाँ शक्ति भरी होती, वो अधिक बड़ी सेवा है। फायदे और नुकसान की बात देखो, यहाँ पर फायदा है कि नुकसान है? तो रिवाइज करना है, सुबह एक बार रिवाइज, दोपहर को एक बार रिवाइज करना है, रात को एक बार रिवाइज करना है। ये जो समय है रात का, जैसे दिन का समय सुबह का, यह समय शक्तिशाली है जिसमें हम सफल कर रहे ज्ञान की चर्चा कर, उसके पहले रात को सोने से पहले भी ज्ञान की चर्चा कर ही सोना है। वो दूसरी बात है, अलग से बैठकर अव्यक्त मुरली पढ़ना, उसका अपना महत्व है। योग करना, हम बात कर रहे चर्चा करने की, किसी भी तरह से करो चर्चा होनी चाहिए। हमारे मुख से जो साकार मुरली चली है उसका हर पॉइंट निकलना चाहिए मुख से बाहर, वरदान या स्लोगन या महावाक्य या प्रश्न उत्तर कुछ भी। अगर कोई है ही नहीं चर्चा करने के लिए, स्वयं से चर्चा करो। पेड़ के एक एक पत्ते को सुनाओ, कितने पत्ते हैं झाड़ में, पत्तों से बातें करो, प्रकृति से बातें करो, इन पंछियों से बातें करो, इन झील से बातें करो, इन पर्वतों से बातें करो, कितना सौंदर्य है उनमें। उस एकांत में जैसे ही मन जाता है शांत हो जाता है, प्रकृति के सानिध्य में जाते ही चित्त स्थिर होता है। ऐसा निश्चिष्ट चित्त ही शांत हो सकता है। तो रिवाइज, दूसरी मेथड स्वयं को बिजी रखने की, ये मन को
लाइव करना शुरू कर दो,
बुक्स पढ़ना, हमने अब तक कौन कौन सी बुक्स पढ़ी नहीं है, पहले तो उसकी लिस्ट। कितनी अच्छी अच्छी किताबें यहाँ यज्ञ की रखी हुई है, यज्ञ की भी है और कुछ बाहर की भी है। तो बुक्स, अध्ययन, अध्ययनशील बनना, लक्ष्य रखना कि ये किताब मुझे 10 दिन में पूरी करनी है। लक्ष्य रखा, ब्रह्मचर्य की किताब है, पढ़ी हमने, नहीं पढ़ी, थोड़ी पढ़ी और छोड़ दी थी, लो उसको वापस, इसको पूरा करना है। एक शिवरात्रि की छोटी सी किताब है, पढ़ी हमने, नहीं पढ़ी, पहले उसको पूरा करो। त्योहार की किताब है, पढ़ी हमने, नहीं पढ़ी, पहले उसको पूरा करो। मूल्य जीवन पर किताब है, क्या हमने पढ़ी, नहीं पढ़ी, पहले उसको लो और पूरा करो। बाप समान बनने वाली छोटी सी किताब है, क्या हमने पढ़ी, नहीं पढ़ी। स्पार्क की सारी किताबें हो गई पढ़ के, ज्ञानामृत इतने सारे, लाइब्रेरी सबसे अच्छी जगह है। जो अध्ययनशील आत्मा है, जिन्हें योगी योगियों के लिए लाइब्रेरी से अधिक सुंदर वस्तु स्थान इस संसार में कही जाएंगे, किताब खाना, कुतुब खाना कहते हैं उसे उर्दू में। ये जो कुतुब खाना है, इससे इसके जैसी वस्तु, इसके जैसी चीज, वस्तु कहो या स्थान कहो, संसार में और कहीं नहीं है। जितने भी महान आत्माएं थी संसार में आज तक, सबको एक शौक था, लाइब्रेरी। अथाह ज्ञान का भंडार है। सोचो आपके पास विदेश से कोई व्यक्ति आ गया, उसके पास एक नई बातें है उनके पास, और उसने आपको ये सारी बातें, आप जैसे उसके संपर्क में आए, उसके थ्रू आपको सारी बातें पता चल गई। ये ऐसा होता है, यहाँ वैसा होता है, वहां वैसा होता है, हमारे देश में ये होता है, ये तो भाग्य है कि वो आया। ऐसे फिर कितने सारे देश है संसार में और कितनी सारी महान आत्मा है, उन सबके संपर्क में हम कहां से आएंगे, हमें वो कहां मिलेंगी। जरूरी तो नहीं है हमारे पास हर बार कोई आ जाए और हमको सब कुछ बताए, उसके जीवन का कोई ऐसा अनुभव हमको सुना देगा कि जो उसके सुनते ही हमारे जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया। एक हमारी कमिटी 10 साल से सब कुछ कर लिया, ज्ञान के प्रयोग, योग के प्रयोग, संकल्पों के प्रयोग, सब कुछ, हजारों लोगों से पूछ लिया क्या किया जाए, सबने बताया ये करो, वो करो, वो करो, कुछ हुआ नहीं। और वो नई आत्मा आई, उसने हमें कुछ ऐसी बात बता दी उसके जीवन की, इस लक्ष्य से भी नहीं कि हमारी अंदर की जो कमी है वो तो पता भी नहीं उसे, उसने तो सहज बता दी और हमारी कमी को निकालने का साधन हमको मिल गया उसकी बात सुनकर। तो ऐसी आत्माएं तो भाग्य है कि मिल जाए, पर लाइब्रेरी ऐसी जगह है कि ऐसी आत्माओं का वहां तो जैसे पलटन संग्रह है। तो बुक्स के थ्रू हम एक नए जगत में प्रवेश करते हैं, एक नया द्वार खुलता है जिसमें हम प्रवेश करते हैं, और जब हम उस द्वार से बाहर आते हैं, हम वही व्यक्ति नहीं है जो जाते समय थे, हम नए व्यक्ति बन चुके हैं। तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में नई नई किताबें हैं। विवेकानंद के जीवन में एक उदाहरण है, कहाँ थे वो मैं भूल गया, उसकी तारीख भी है, तो वहां थे वो। वो अपने मित्र को रोज भेजते थे एक लाइब्रेरी में किताब लाने के लिए, तो वो मित्र जाता था, किताब लेके आता था, दूसरे दिन वापस कर देता था। तो वो लाइब्रेरियन बोला, ये कहाँ, क्या खेल कर रहे हो क्या, रोज एक दिन किताब ले जाते हो और दूसरे दिन वापस कर देते हो एक ही दिन में। तो कहता, ये मैं थोड़ी ना, मेरे मित्र के लिए चाहिए। तो कहता, कौन सा तुम्हारा मित्र है, उससे मिलना है मुझे। तो जब मिलने जाते हो, कहते हो, ये तुम क्या कर रहे हो, एक दिन में किताब लेके जाते हो, दूसरे दिन पढ़ते भी हो या नहीं। वो तो जो पूछना है पूछ लो। तो वो लाइब्रेरियन जहां जहां से जो जो किताबें उन्होंने पढ़ी है, कार्ल मार्क्स, लेनिन, रशियन रिवॉल्यूशन, ये सारी जो किताबें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो जो किताबें वहां थी, उनमें से जो जो पूछता है, कार्ल मार्क्स की थियरी, लेनिन की थियरी, कहां कहां क्या क्या लिखा है, वो वैसे के वैसे बताते हैं। ऐसी शक्तियां कहां से आती है आत्माओं में, एकाग्रता से और अध्ययन। तो अध्ययनशील होना है। जो जो हमने अब तक नहीं पढ़ा है, या हमें इच्छा थी पढ़ने की पर हम नहीं पढ़ पाए किसी ना किसी कारण से, वो अभी पढ़ना है। सोचो, पहले तो बुक्स की लिस्ट बनाओ कि ये किताबें अब तक नहीं पढ़ी है, यज्ञ की और कुछ बाहर की भी है अच्छी अच्छी किताबें, तो पढ़ना। सेकंड, थर्ड, बिजी किस में रखें, चिंतन में बिजी रखें। रोज अपने आप को कोई ना कोई चिंतन का बिंदु दो कि किस में हमें बिजी रखना है। चिंतन, चिंतन के लिए 2 मेथड है, एक तो मन के मन में जो कर सकते हैं चिंतन, दूसरा है जो मन से डायरेक्ट नहीं कर सकते वो लिखे, लिखना, जैसे कल की मुरली में था बेहद का वैराग। वैराग हम कैसे लाए अपने जीवन में? लिखो। लिखने में भी एक है लेख लिखना, एक है कविता लिखना। जिनको कविता लिखना आता है वो कविता लिखे और उसमें फिर रचनात्मक बनाए, उस कविता को नयापन डाले उस कविता में, लिखे। ये लिखना जो है वो चिंतन को स्टिमुलेट करेगा। तो चिंतन या लिखना एक साथ ही कर दो दोनों को। चौथा, अनुभव, पुराने जो अनुभव है हमारे उनमें रमन करना। अच्छा चलो, ये भी एक बिजी रहने की विधि है। और पूर्णिमा बहन किस में बिजी रहेंगे? हो गया लिखना। क्लासेस सुनने में, क्लासेस भी कैसे सुननी है? एक है एक क्लास पूरा सुन लिया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, हो गया पूरा, अभी चलो आगे, ये नहीं। अगर क्लासेस सुनना भी है तो इस रीति से सुनो कि जिसने सुना या जो विचारक है उसके विचार, अच्छे विचार हमारे विचार बन जाए। क्लासेस अगर सुनना है तो एक तो चलते फिरते सुन सकते हैं, या दूसरा बैठ कर सुनो और कॉपी पेन, सुनते सुनते पॉज करो, पॉइंट लिखो, सुनो, फिर कोई अच्छी पॉइंट आई फिर पॉज, फिर लिखो, फिर पॉज, फिर सुनो, पॉइंट्स लिखो। और अब जो ये लिखा हुआ है उसमें कुछ उदाहरण है या कुछ अच्छी पॉइंट्स है जो हमने पहली बार सुनी है, उनको फिर रिवाइज करो। इतनी बार रिवाइज करो कि फिर अभी वो क्लास को दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है वो, क्योंकि हमने अपने अंदर धारण खींच लिया है, उसे समा लिया है, सोख लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर, फिर उसको बार बार सुनने की जरूरत नहीं। केवल सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनने को अच्छा लगता है, कनरस मात्र है, फिर वो अच्छा है, परंतु वो शब्द हमारे शब्द हो जाए, वो भावनाएं हमारे भावनाएं हो जाए, वो पॉइंट्स हमारी पॉइंट्स हो जाए, सिमिलैरिटी हो जाए, फिर उसको छोड़ा जा सकता है, फिर उसको सुनने की जरूरत नहीं। सुन पहली बार ही सुनते समय ही पॉइंट्स के साथ सुनो, पॉइंट्स पॉइंट्स निकाल लिए, और किसको सुने? सबको सुनो, क्योंकि इतनी वैरायटी है और इतना फ्लेवर है, इतनी कितनी सारी आत्माएं यज्ञ में कि जिनके पास इतने सारे अनुभवों के खान है उनके पास, सबको सुनो। और सब में कोई ना कोई एक दो पॉइंट तो होगी अच्छी, हम उसको ले ले। तो क्लासेस सुनना, इसमें बिजी रखना है, और कोई स्थूल कार्यों में बिजी रखना है, जैसे कि अगर हमारे पास एक घंटा है कुछ भी नहीं कर रहे, किचन में जाके सेवा करना एक, दूसरा सफाई का कोई काम करना जो हमेशा हमने छोड़ के रखा है, तीसरा इसमें बटन नहीं है या सफाई धुलाई कपड़ों की या बटन निकली हुई है, कहीं ना कहीं स्वयं को बिजी रखना है। ये अलमारी है, कई समय से साफ ही नहीं की है, उसको साफ करना, अलमारी को साफ करना, किचन को साफ करना, कपड़ों को ठीक करना, ये भी स्थूल कार्य है जिसमें हमें स्वयं को बिजी रखना है। गार्डनिंग, उसमें स्वयं को कुछ करना, बिजी रखना, वो एक है। ये सारी स्थूल कार्य है जो हमने किए नहीं है और वो छोड़ते गए कहीं ना कहीं कारण से, उसमें स्वयं को बिजी रखना, कुछ स्थूल चीजों में बिजी रखना। और बिजी किसमें रखना? जॉगिंग, एक्सरसाइज, वेट लॉस। कई लोग होते हैं ना हमारे ओपीडी में, दिन भर में वही लोग आते हैं, कहते वजन कम कैसे करना, वजन कैसे कम करना, एक ही बात पूछते हैं सुबह से लेकर रात तक, जितनी सेंटर की बहनें और भाई, ये एक प्रश्न है। तो उसका उनका हो सके तो उसका वो प्रोग्राम बने, वो एक अलग विषय है। और पेंटिंग, आर्ट, आर्ट जैसे आज की मुरली चली, जो पेंटर है वो तो बना ही सकते हैं आर्टिस्ट, जो नहीं है उनके लिए ये कार्य है कि आज की जो मुरली है उसमें क्या पेंटिंग बनाया जा सकता है, कौन सा चित्र बनाया जा सकता है। जैसे यही पॉइंट ले लो, मुरली अभी चल रही है कुमारों, तो बाप दादा की उम्मीद है, बाप दादा यहाँ बैठे हैं, कुमार यहाँ है, बाप दादा की उम्मीद है, उसमें एक उम्मीद है, डबल शक्ति है उनमें, कुमार वह जो विश्व का परिवर्तन कर सके, कुमार वह जिसमें जो डबल शक्तिशाली है, कुमार वह जो स्वयं को बिजी रखता है, कुमार वह जो खाली नहीं रखता है। तो बिजी कैसे रहे? अभी बिजी की हमने जो जो पॉइंट्स बनाई, इसका ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कुमार है फिर एक पॉइंट रिविजन, एक चित्र बनाए कि जिसमें वो रिवाइज कर रहा है, दूसरा पॉइंट कुछ स्थूल कार्य कर रहा है, तीसरा पॉइंट क्लास सुन रहा है, चौथा पॉइंट लिख रहा है, ये चित्र बनाया ना। अब ये जो चित्र जो एक बार बन गया बुद्धि में, ये नहीं भूलेगा, क्लास गई किसने कराई वो भी गई, पर ये जो चित्र बना ये नहीं भूलेगा, क्योंकि ये चित्र बन चुका है एक। चित्र जो बना है, बाप दादा इधर, कुमार नीचे बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे एरो लगा इधर उधर उधर उधर, और 1 2 3 4 5 किताबें, लाइब्रेरी, कमलेश भाई बैठा हुआ है लाइब्रेरी में और हम भी बैठे हुए और पढ़ रहे, ये चित्र हमने बना लिया है लाइब्रेरी का, तो वो नहीं भूलेगा। जो भी चीज हम पढ़ते हैं, ये जो वर्ड्स है, वर्ड्स नहीं रहती है बुद्धि में, इसको पिक्चर में ट्रांसफर कर दो। इसका जो रूप है, सुनते सुनते, एक है सुनते सुनते ही पिक्चर बनाते जाओ, मुरली सुनते सुनते ही पिक्चर बनता जाए कोई ना कोई, एक है तब के तब नहीं बनेगा, भारी काम है थोड़ा, इसको फिर बाद में बैठ कर पिक्चर बनाओ। और हरेक के पास बहुत टाइम है, दिनचर्या में भी कितना भी बिजी हो, उसमें अभी हम बैठे हैं, अभी कोई नहीं है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद कोई मिलने आने वाला है, उस 10 मिनट में कुछ पिक्चर बनाओ एक। तो एक तो ये भी कार्य है, किसका टर्न है आज, एक तो वो भी कार्य, और किसमें बिजी रहे, तो वर्कआउट, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सारे जो है ना, ये भी एक बिजी रहने के अलग अलग, म्यूजिक, म्यूजिक, फिर है सेवा, जैसे सूल सेवा, ज्ञान सुनाना। अब ज्ञान सुनाना है, हर बार एक ही एक रीति से नहीं सुनाओ, अभी कोई आज सोचो, आज अगर कोई पार्टी मिल जाए तो उनको कुछ और सुनाएंगे, यज्ञ का चाहे इतिहास सुनाओ उनको, हमेशा केवल वही वही बातें नहीं, कुछ तो नई बात उनको सुनाओ। आज सोचो हम केवल यहाँ जो लक्ष्मी नारायण है बस उसी पर समझाएंगे, बाकी छोड़ो, कुछ तो एक बिंदु ले लिया, वो एक नई बात उनको बताएंगे जो शायद उन्होंने आज तक सुनी नहीं है, या केवल आबू का इतिहास ही उन्हें बताएंगे, आबू का क्या इतिहास है, आबू शब्द कहां से आया, और फिर उसको अध्यात्म से कैसे जोड़ेंगे। कुछ तो हमारे सुनाने में भी नयापन, हम संस्थाओं का परिचय देते हैं, सभी बहनों को और सभी भाइयों को संस्थाओं का परिचय देना पड़ता है, एक ही एक रीति से नहीं देना है संस्था का परिचय, क्यों ना कोई एक नई मेथड, नई विधि, मेथडोलॉजी इजाद की जाए, जिस रीति से उसको कुछ नवीनता पूर्वक बताया जाए, क्योंकि जो आजकल लोग आते हैं सब सुनकर आते हैं, पढ़कर आते हैं, सब पता रहता है उनको क्या क्या है, ऐसा कुछ नहीं जो उनको पता नहीं है, सब पता रहता है। हम उनको ऐसी कौन सी पॉइंट सुना दे कि उनके मन में जो लंबे समय जो एक शंका का विषय है, डाउट, वो वहां से निकल जाए। तो नए रीति से संस्था का परिचय देना, वो जो लिखा हुआ है वहां पर बोर्ड, यहां लिखा है ना ये संस्था क्या है, नाव है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, इसको पढ़ना, और उस रीति से भी समझा सकते हैं नए रीति से। तो नवीनता समझाने में, तो ये सेवा, किचन में सेवा करना, स्थूल सेवा करना, जहां जहां हमारी जरूरत, सोचो कौन सी सेवा है जो अब तक हमने नहीं की है, स्थूल सेवा में भी कौन सी वो सेवा रह गई है जो हमने अब तक नहीं की है, वो सेवा करनी है। तो अपने आप को मन से भी बुद्धि से भी बिजी रखना है, कहीं पर भी खाली नहीं छोड़ना है, बस ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ओम शांति।